ब्रॉडकास्ट को समाज फरमाएंगे, जवानों किए जाओ मधे अकबर, भाई जवानी में इबादत का मजा है, जवानी में इबादत का मजा है। शहादत पाई 18 बरस में, शहादत पाई 18 बरस में, मुकद्दर अपनी दादी का मिला है, मुकद्दर अपनी दादी का मिला है। और मक्ता समाज फरमाइए, नसीमी फिक्र हासिल हो मुझे भी, नसीमी फिक्र हासिल हो मुझे भी, कसीम अमरोही की बस ये दुआ है, कसीम अमरोही की बस ये दुआ है। बाज़े बुलंद नारे सलावत
अल्लाह। आपका था क्या, आपके वालिद का? अच्छा لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. 6th of Muharram 1443 هجرة. 6 محرم کی یہ مجلس الاثر اسلامک سینٹر ملبن میں امام زمانہ اور ولایت علی کے عنوان پہ ہو رہی ہے، لیکن آج کی یہ مجلس ایک بہت ہی اہم اعلان کے ساتھ شروع کی جا رہی ہے. موقع ملا تو آخر مجلس میں بھی اس اعلان کی تکرار کی جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے موقع نہ مل سکے، کیونکہ آج کی مجلس کو اس اعلان کی وجہ سے ہمیں ہر حالت میں وقت میں ختم کرنا ہے، یا کم از کم پوری کوشش کرنا ہے. ملبن لاک ڈاؤن میں تھا، اور پرانے اعلان کے مطابق تھرسڈے یعنی 9 محرم کی رات کو یہ لاک ڈاؤن ختم ہو رہا تھا، اور یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ 10 محرم یعنی عاشورے کا دن، جو آسٹریلیا کے اعتبار سے فرائیڈے یا جمعہ ہے، اس دن لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا اور ہم نارمل طریقے سے پھر عاشورے کے تمام پروگرام کو کریں گے. لیکن یہاں پہ کچھ کرونا کے کیسز بہت بڑھ گئے، جس کی وجہ سے حکومت نے ایک تو 2 ہفتے اس لاک ڈاؤن کو بڑھا دیا، اور اب یہ ایام اضا کے پہلے عشرے کے بھی بہت دن بعد ختم ہو رہا ہے. 2nd of September شاید چوتھے امام کی شہادت کی تاریخوں سے بالکل متصل. تو اب یہ لاک ڈاؤن بڑھ گیا، جس کی وجہ سے اس عشرے کی باقی مجالس بھی لاک ڈاؤن میں ہی ہوں گی، اور ہمارا یہ ارادہ تھا کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا ہماری مجالس فیس بک اور یوٹیوب پر نہیں جائیں گی، لیکن اب تو یہ پورا عشرہ ہی سوشل میڈیا ہی پہ جائے گا، اگرچہ الاثر امام بارگاہ مجلس کی حد تک کھلا ہے، صفحہ اعضا بچھی ہے، میڈیا کے حوالے سے جتنے لوگوں کو حکومت نے اجازت دی ہے وہ موجود ہیں. لیکن عام مومنین کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ارادہ تھا یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو پھر ایک اعلان عام کیا جائے گا. اچھا مسئلہ خالی لاک ڈاؤن کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے لاک ڈاؤن تو ایکسٹینڈ کیا ہی گیا ہے. آج رات سے میلبرن میں یہ کورونا والا جو کرفیو ہوتا ہے وہ کرفیو بھی شروع ہو رہا ہے, اور آج پہلا دن ہے, اچانک اعلان ہوا اس لیے حکومت نے آج آدھی رات سے کرفیو شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن ایڈوائز یہی کہ 9 بجے سے ہی لوگ یہ سمجھیں کہ گویا کرفیو شروع ہو چکا ہے, اور 8 بج چکے ہیں. تو یہ مجلس ہماری گورنمنٹ کے لاس کے مطابق ہو رہی ہے, اس کے خلاف ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں, اور اس میں یہ اجازت ہے کہ مجلس ہو سکتی ہے, لیکن کرفیو کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہے. انڈیا اور پاکستان کے لوگ کرفیو سے وہ والا کرفیو نہ سمجھیں, لیکن کرفیو کا خلاصہ یہ کہ گھر سے کوئی آدمی باہر نہیں نکلے گا. اب یہ ساری میں نے تفصیل کیوں بتائی کہ آج اب سے تھوڑی دیر کے بعد کرفیو شروع ہو جائے گا 3 گھنٹے کے بعد, اور نیکسٹ ڈے یعنی کل سے سوئم کی مجلس تک یہ کرفیو بہت جلدی 9 بجے رات کو شروع ہوگا. اس لیے اب یہ اہم اعلان, بیکاز آف دس کرفیو کل سے ہماری مجلس کا ٹائم چینج ہو رہا ہے, اور 1 گھنٹے پہلے یہ مجلس شروع ہوگی. آسٹریلین ٹائم سے 7:45 پر آج کل مجلس شروع ہوتی ہے, 8 بجے میرا بیان ہوتا ہے سوزو سلام کے بعد. بٹ فرام ٹومورو ٹل دا لاسٹ مجلس سیٹرڈے تک یہ مجلس 6:45 پہ شروع ہوگی تلاوت اور سوزو سلام کے سے, اور 7 بجے میرا بیان ہوگا. اور اب وہ مجبوری آ چکی کہ میں جو 70 منٹ 80 منٹ کبھی کبھی 90 منٹ کی مجلس پڑھ دیتا تھا یہ اب نہیں ہو سکے گا, 1 گھنٹے میں مجھے بیان مکمل کرنا ہوگا. کیونکہ اب جو راتیں ہیں ساری کی ساری, یہ راتیں وہ ہیں کہ جس میں تابوت یا مختلف دیگر شبی بھی برآمد ہوں گی اور نوحہ خانی بھی زیادہ ہوگی. تو جو لوگ لائیو مجلس سننا چاہتے ہیں, ویسے تو فیس بک اور یوٹیوب پر 2 گھنٹے کے بعد بھی وہ سن سکتے ہیں, لیکن لائیو مجلس میرا بیان 7 بجے شروع ہوا کرے گا, اور اصل مجلس 6:45 پہ اسٹارٹ ہوگی فرام ٹومارو. البتہ عاشورے کا جو ڈے پروگرام ہے وہ اسی طرح سے رہے گا, کیونکہ وہ کرفیو سے کلیش نہیں ہو رہا. باقی باتیں میں بعد میں بتاؤں گا, یعنی شب عاشور, عاشور کے دن کے پروگرام کے بارے میں. آج ویسے ہی 5 منٹ تاخیر سے میرا بیان شروع ہوا, کیونکہ ہم لوگ یہی ٹائمنگ کو ڈسکس کر رہے تھے, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 1 گھنٹے کا بیان ہی کرنا ہے تو وقت بہت گزر گیا. اب یہ اعلانات کو چھوڑیے براہ راست. اچھا اب اس کی وجہ سے یہ جو اس وقت صورتحال بنی, اس کی وجہ سے مومنین کرام کو جو واقعا ایک قسم کا شوق پہنچا ہے یا وہ صدمے کے عالم میں ہے, وہ یہ کہ ایام عزا کے پہلے عشرے میں بھی گھروں کی مجلسیں ہوتی ہیں مختلف تاریخوں میں, لیکن عشرہ ختم ہونے کے بعد تو لوگوں کی سالانہ مجلسیں ہوتی ہیں, لیڈیز کی بھی اور جینٹس کی بھی, گھروں کے اندر. گھروں کی مجلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجلس گھر میں رکھنا اس کے جو تاکید ہے, ثواب ہے, بینیفٹ ہے, برکتیں ہیں, وہ ہر ایک لینا چاہتا ہے. تو وہ سلسلہ فی الحال, اب یہ الاسر اسلامک سینٹر کا مسئلہ نہیں, اب یہ گھروں کی مجلس 2 ستمبر تک تو نہیں ہو پائیں گی, اور آگے بھی خدا معلوم کیا کیفیت. تو یقیناً دل ہر ایک کا روتا, ہر ایک کو ایک کمی کا احساس ہے, اور خاص طور پر یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ لاسٹ ایئر بھی یہ ہو چکا. ہم کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں, ہم پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں, یعنی ایک محاورت نہیں سمجھیے, ہم ہوا کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں لیکن عزا کے بغیر تو نہیں رہ سکتے. یہ ایک اللہ ہمارا امتحان لے رہا, اور یہ بھی ہم کو ٹیسٹ کیا جا رہا. میں اس کے علاوہ حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ عرض کر دوں कि अचानक ये लॉकडाउन बढ़ गया और ये कर्फ्यू हो गया और उसकी वजह यह कि केसेस बढ़ गए। उसकी वजह यह है कि बाज अफराद ने कुछ पार्टियां कर ली या कुछ और इस तरीके की गैदरिंग कर। अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद के मानने वाले शिया ने हैदर कर्रार ने, हम कानून पसंद लोग, हुकूमत ये कानून की पाबंदी रखी आजादारी तक के अंदर, बावजूद ये कि मरने को दिल चाहता है इंसान का, आजादारी नहीं छोड़ सकता, लेकिन जो आले मोहम्मद की टीचिंग है उसके एतबार से हमने कानून की पाबंदी की और मोमिनीन और मोमिनात ने कहीं भी इसकी मुखालिफत नहीं की। और इंशाल्लाह हम लोग, आले मोहम्मद ही ने हमको ट्रेन किया है, उन्हीं की टीचिंग है, उन्होंने ही हमको बताया कि आजादारी भी कानून के दायरे में रह के की जाती है। और हमें यह भी यकीन कामिल है कि ये आजादारी चूंकि एक नई चीज नहीं, 1400 साल से होती चली आ रही, तो इससे ज्यादा सख्त मरहले आए हैं। और जब वो मरहले खत्म हुए, आजादारी पुरानी शान और शौकत के साथ नहीं हुई है, उससे भी ज्यादा शान और शौकत के साथ हुई। अक्सर जो लोग मिसाल में कह देते हैं कि जो सद्दाम ने पाबंदी लगाई, बहुत सख्त पाबंदियां, लेकिन सद्दाम के खात्मे के बाद यहाँ तो सिर्फ 2 साल ऐसे गुजर रहे, सद्दाम के जमाने में 20 साल आजादारी मुतासिर रही, लेकिन अब किस शान के साथ, जो सद्दाम से पहले प्री सद्दाम और पोस्ट सद्दाम आजादारी का फर्क देखने वालों को पता कि हमें हौसला है, हमें यकीन है कामिल है कि जिन जिन घरों में मजलिस नहीं हो पा रही, जो जो अजाखाने हालात की वजह से बंद हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये इम्तिहान का वक्त गुजर जाएगा, हम पुरानी शान और शौकत से भी बढ़कर आजादारी करेंगे। लेकिन जब तक ये इम्तिहान है, हम आले मोहम्मद के बताए हुए तरीके के मुताबिक आजादारी कर रहे हैं। और आले मोहम्मद ने आजादारी के हवाले से हमारी हुकूमत को भी, इससे मुराद सिर्फ ऑस्ट्रेलियन हुकूमत नहीं है, शिया ने हैदर करार, दुनिया में जहां किसी हुकूमत को भी हमसे ये शिकायत नहीं होगी कि हम कानून तोड़ रहे हैं और लोगों की सेहत के लिए खतरा बन रहे हैं। और आले मोहम्मद भी यकीन हमारे इस जज्बे को देख रहे हैं आजादारी के हवाले से। आले मोहम्मद जो सबसे पहला पैगाम हमें दिया, 2 बहुत अहम पैगाम दिए हैं, लेकिन आज की मजलिस में सिर्फ पहला पैगाम वो ये दिया कि आजादारी का कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कितने लोग मजलिस अजा में या जुलूस में शरीक हो रहे हैं। आले मोहम्मद तादाद को नहीं गिनते हैं कि फुला के घर की मजलिस में मुझे जाना है क्योंकि वहां 50 आदमी आए हैं और फुला मजलिस में नहीं जाना, वहां सिर्फ 1 आदमी। बहुत माजरत के साथ एक जुमला कह रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं, आम मोमिन को इजाजत नहीं है ये कहने की, मैं कह सकता हूं क्योंकि बहरहाल वो हमारे ही फील्ड के लोग हैं और अब मैं उम्र के एतबार से भी इतना सीनियर हूं कि हमारे यहां बाज स्पीकर और खतीब हजरात कौन सी मजलिस पढ़ना है उसमें क्राइटेरिया ये उनका होता, कहां लोग ज्यादा आते। 2 चीजें आले मोहम्मद ने बताई हैं, एक तादाद के एतबार से, एक पैसे के और कमर्शियल होने के हवाले से, लेकिन ये 2 चीजें आज की मजलिस में जमा नहीं हो सकती हैं। तो बाज का क्राइटेरिया ये होता, अच्छा आप मजलिस का वादा लेने आए, आप कहां करेंगे मजलिस, ओहो वो तो बहुत छोटा इमामबाड़ा है, वहां तो 15-20-25 आदमी आते होंगे। आले मोहम्मद का तरीकाकार नहीं, एक मुखलिस मोमिन अपने घर में अकेले बैठ के भी अगर मजलिस कर रहा तो आले मोहम्मद उसकी सिंसियरिटी को देखकर उस मजलिस को ज्यादा पसंद करते हैं उस 1 मिलियन के मजमे से। तो ये जो एक उसूल मैंने पहली दूसरी मजलिस में अर्ज किया था, ये जहन में रखिएगा और कोई अफसोस इस हवाले से ना हो कि हमारी मजलिस कबूल नहीं हुई, अफसोस इस हवाले से हो कि जो हम चाह रहे थे, जिस अंदाज से जो हर साल अय्याम अज़ा के आखिर में कहते भी हैं कि मौला, यानी जब कोई पाबंदी नहीं हो, फुल फ्लेज आजादारी हो रही है, तब भी हम कहते हैं कि मौला 2 महीने हमने आपकी आजादारी की मगर हक तो अदा ना किया, जो मौला अल्लाह के लिए कहते थे कि परवरदिगारा मैंने तेरी इबादत का हक अदा ना किया अली जैसा आबिद। तो यही अज़ा के हवाले से पैगाम है, तो हमें इस हवाले से घबराने या डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। और एक इसी मैसेज को मैंने कल रात की मजलिस में अर्ज किया था कि आजादारी पे मुझे बात अब खत्म करना है, मुसलसल 5 दिनों से बात हो रही है, लेकिन चूंकि अचानक के लॉकडाउन और कर्फ्यू और घरों की मजलिस और पहले अशरे के बाद की मजलिसें इफेक्टेड हुई हैं, तो मैंने कहा जरा सा फिर आपको मैसेज रिमाइंड करा दूं, और ये वाला मैसेज कि आले मोहम्मद के यहां खुलूस देखा जाता है, तादाद अदद ये नहीं देखा जाता है। और इसके लिए आज मैं उस वाकये की जानिब इशारा कर रहा हूं जो इतना मशहूर इतना मशहूर इतना मशहूर इतना मशहूर हो गया कि उसको बयान करने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए एज ए रिमाइंडर बता रहा हूं, वो बहुत ही मुख्तसर करके। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की हद तक तो मैं जानता हूं कि ये वाकया पूरी डिटेल के साथ शायद पहली बार मैंने ही बयान किया था। ये मैं क्यों जुमला कह रहा हूं, वो अभी वक्त कम है, फिर भी जरा सा इसका बैकग्राउंड बता दूंगा। और वाकया है शतीता बीबी का। ये मुझे याद है कि पाकिस्तान से कसीर तादाद में काफिले ईरान जियारत पे जाते थे हमेशा से, और हिंदुस्तान से भी जाते होंगे, होंगे क्या जाते थे, लेकिन शतीता बीबी के रोजे के बारे में किसी को पता ही नहीं था, जाते भी नहीं थे। नेशापुर जहां जनाबे शतीता का रोजा है उसके करीब तक जाते थे, लेकिन वो एक कदमगाह की जियारत थी। और एक वो शहजादा महरूख की जिन्हें आग में जिंदा डाल के जला दिया बनु मैया के हुक्मरान ने, तो ये दो जियारतें होती थी। और उससे थोड़ा आगे जनाबे शतीता का रोजा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो डर लगता है कभी कभार, मैं बहुत कम अपने हवाले से कोई बात कहता हूं, लोग तो पूरी पूरी मजलिस अपने बारे में पढ़ देते, मैं बहुत कम कहता हूं, जब कहता हूं तो फिर ये कमेंट भी मुझे मिलता है, खासतौर पर खवातीन के कमेंट, वो तो पता ही है ना आपको कि समझ में नहीं आ रहा है, आज हजरत अली अकबर की मजलिस थी कि मौलाना सादिक हसन की मजलिस थी। लेकिन सिर्फ एक जुमला कि जब ये वाकया पढ़ने के बाद कराची में बड़े इमामबाड़े में पढ़ा था, दो तीन साल के बाद मुझे मशहद मुकद्दस की जियारत का मौका मिला, तो वहां एक मुसाफिर खाना था, खोजा मुसाफिर खाना, मरूम वली भाई उसके मुंतजिम थे। तो जिस वक्त मैं उस मुसाफिर खाने में ठहरने गया, उस वक्त मशहद के बाकी मुसाफिर खानों का स्टैंडर्ड काफी लो था, होटल तो न होने के बराबर था। और वली भाई को पता चला मैं कौन हूं, अच्छा आप है सादिक हसन। मैंने कहा भाई क्या आपने इतना ताज्जुब के साथ कहा, आपके मुसाफिर खाने में तो बड़े बड़े उलमा, उस वक्त लेट 70s में तो मैं था भी बहुत जूनियर, तो इतने हैरत से क्यों देखा, कहा ये पिछले दो साल से हमारे मुसाफिर खाने में एक नया सिस्टम बना, कब से ये मुसाफिर खाना हम चला रहे हैं, कब से मैं इस मुसाफिर खाने का मुतवल्ली या मुंतजिम, लेकिन पिछले दो तीन साल कराची से जो काफिला आता है आके कहता है टैक्सी करा दीजिए शतीता बीबी के रोजे पे जाना, टैक्सी करा दीजिए शतीता बीबी के रोजे पे जाना। 1200 साल से वो रोजा था, जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान के जायरीन यहाँ आ रहे हैं, मुसाफिर खाना उनके लिए सारे ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करता है, ये शतीता बीबी का सिलसिला दो साल से, अब हम एक बार दो बार तीन बार तो मैंने सुन लिया। और अब जो मुसलसल लोग आ रहे हैं, कराची वालों की बात हो रही है, मुझे लाहौर का नहीं पता, मुझे बंबई का नहीं पता, मुझे ईस्ट अफ्रीका का नहीं पता, तो जिससे हमने पूछा कि भाई ये शतीता बीबी का आपको कैसे शौक हुआ, कहा वो मजलिस पड़ी थी मौलाना ने और उसमें उनके पूरे हालात को बयान किया गया था। इसलिए मैंने जुमला कहा कि शायद कराची की हद तक पहली बार ये वाकया इतनी डिटेल से मैंने पढ़ा। उस वाकये का अहम तरीन मैसेज क्या, अहम तरीन मैसेज, मैं वाकया तो पढ़ना ही नहीं चाहता इसलिए कि कम से कम 40 मिनट मुझे चाहिए, और इतने मर्द जाकिरीन और खवातीन जाकिरात ने यह वाकया पढ़ लिया, एक बेहतरीन वाकया भी अपनी जगह, इंटरेस्टिंग भी है, मैसेजेस भी है, और मजलिस भी 40 मिनट की आराम से हो जाती है एक वाकये में, लेकिन उसका एक पैगाम, और उसमें ज़िमनन कुछ ऐसी बातें आएंगी जो मेरी कल की मजालिस से का रब्त बनेगा। आज से बनना था रब्त, लेकिन आज ये लॉकडाउन और कर्फ्यू और इसका ऐलान, जिसकी वजह से वक्त कम है, लेकिन वो एक मैसेज। ये वाकया किसका है, ये वाकया है मोहम्मद इब्ने इब्राहिम, अबू जाफर मोहम्मद इब्ने इब्राहिम है नेशापुरी। पुराने जमाने का एक आम दस्तूर था कि हर शहर में कुछ ऐसे ट्रस्टवर्थी लोग होते थे, बहुत ही अमानतदार किस्म के, कि शहर के लोग, अब वो बैंकिंग सिस्टम तो है नहीं, पहले पैसा यहां से वहां भेजना, तो इसका एक तरीका तो हवाला था जो हमेशा से राइज रहा, लेकिन जो आले मोहम्मद के चाहने वाले आले मोहम्मद को जो रकम देना चाहते हैं वो उस चैनल से नहीं जा सकती। चुनांचे हर शहर में एक ऐसा काबिले भरोसा अमानतदार आदमी होता जो शहर के तमाम मोमिनीन की अमानतें लेकर खिदमत इमाम में जाता। नेशापुर में ये जिम्मेदारी अबू जाफर मोहम्मद इब्न इब्राहिम नेशापुरी अंजाम देते थे। चुनांचे इस साल भी जिस साल का ये वाकया है 149 हिजरा होना चाहिए ये चलने लगे और शहर के लोगों ने अपना पूरा खुम्स दिया और एक से एक। अच्छा आपको मालूम है कि पैसे वाला आज की रात ऐसी रात है कि ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा लेकिन फिर भी बात समझाने के लिए खुदा जब हुसन देता है नजाकत आ ही जाती है। जहां पैसा आता है वहां एरोगेंस आ ही जाता है, वहां घुमंड आ ही जाता है, वहां गुरूर आ ही जाता है, वहां आदमी प्राउडी हो ही जाता है। खुद पैसे वाले को भी नहीं पता होता है कि मैं इतना मगरूर बन चुका हूं। तो आप पैसे वालों का अपना एक मिजाज वो इमाम के सामने भी होता। वो इमाम के पास जाएंगे 10 मिलियन का चेक रखेंगे लेकिन इतने एरोगेंट के साथ कि जैसे वो इमाम पर कोई एहसान कर रहे हैं। सूरह हुजरात कुरान करीम का एक वो सूरह कि जिसे कोई मजलिस वगैरह पढ़ना ना आती है वो सूरह हुजरात को ही मौजू बना लेता है। इतना आसान और इतने प्रैक्टिकल मैसेजेस। आखिरी आयत ए قالت الاعراب آمنا اے عرب کے لوگوں یہ مت کہنا کہ ہم مومن ہیں کہنا کہ ہم اسلام ہیں اور خبردار اپنے اسلام کا اور ایمان کا احسان اللہ پہ نہ جتانا تم نے کوئی احسان اللہ پہ نہیں کیا کہ مومن ہو اللہ نے احسان کیا ہے کہ تمہیں اسلام کی ہدایت دی تو یہ ایک مینٹیلیٹی بن جاتی کہ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہم کسی پر عام آدمی کی بات نہیں امام سے بات کرے گا رسول سے بات کرے گا اللہ سے بات کرے گا اسرائیل ایسا ہوگا خمس کے واقعات بھی ہیں وہ بحرین کا جو آدمی آیا تھا بہت پیسے والا کیونکہ بحرین کے اندر سمندر سے موتی نکلتے ہیں وہ پرلس اتنا پیسے والا تھا وہ بڑی رقم لا کے اس نے امام کو دی امام نے اٹھا کے اس کے منہ پہ دے ماری کیونکہ اس کا اسٹائل ہی وہ تھا اور یہاں بھی یہی تھا کہ اب خود تو لوگ نہیں جا رہے ہیں ابو جعفر کو بھیج رہے ہیں لیکن رقم بہت بڑی بڑی آ رہی ہے ہزاروں کی رقم یہاں تک تاریخ میں کہ 30,000 دینار دینار مینز پیور گولڈ کا بنا ہوا سکہ اور 40,000 درہم درہم مینز پیور سلور کا بنا ہوا سکہ تو یہ اس کے علاوہ کپڑے لباس اس زمانے میں سونے سے زیادہ قیمتی یہ ڈریس ہوتے تھے 2,000 سے زیادہ بہت سوٹ کیس بھر بھر کے لے جا رہے ہیں اور ہر آدمی لا کے دے رہا یہ چلا ابھی یہ چلا شہر کے دروازے پہ پہنچا ایک بڑھیا نے روک لیا یہ تو میں تفسیر میں چلا گیا شتیتہ اس کا نام تھا کہا بیٹا میں نے سنا ہے تو امام کے پاس جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے خمس وغیرہ لے کر کہا ہاں کہا میرے مال میں بھی خمس واجب ہوا اور یہ کہنے کے بعد ایک درہم نکال کے دیا اور ایک چھوٹا سا رومال کا ٹکڑا ابو جعفر کو شرم آنے لگی کہاں میں 30,000 دینار لے کے جاؤں گا کہاں یہ ایک ٹوٹا ہوا دینار وہ دینار کیونکہ ہاتھ سے بنائے جاتے تھے ٹوٹے پھوٹے دیکھا ہوگا کسی عورت نے اگر نئی نئی روٹی بنانا سیکھی ہو تو وہ کیسی روٹیاں بنتی ہیں اس کی نہیں آسٹریلیا والوں نے نہیں دیکھا ہوگا آپ کے یہاں تو کوئی عورت روٹی بنانا چاہتی بھی نہیں ہے جانتی بھی نہیں ہے چلے خیر تو اب مسئلہ یہ لے جاؤ 30,000 دینار امام کو دوں گا 40,000 درہم یہ ایک درہم کا بیٹا میرے مال میں اتنا ہی خمس واجب اور اللہ حق بات سے کبھی شرم نہیں کرتا اس میں شرمندگی کیا بات اتنا واجب ہے اتنا ہی دے رہا ہوں یہ اتنا سر رومال کا 2,000 قیمتی جوڑے مائر وائر ڈیوڈ جونز وغیرہ کے اور وہ کہاں ایک چھوٹا سا بدنما سا رومال گیا یہ واقعہ میں شارٹ کر رہا ہوں یہاں تک کہ خدمت امام میں پہنچ گیا اتنا آسان نہیں تھا پہنچنا یہی تو وہ سال تھا جب چھٹے امام کی شہادت کے بعد امام کے اپنے گھرانے سے دوسروں نے کہا کہ ہم امام ساتواں امام تو غیبت میں چلا گیا امام نہیں چاہتے تھے کہ فیملی پرابلم پبلک کے سامنے آئے جو ہمارے یہاں پرابلم ہے وہ تو ہے ہی دشمنوں کو ہنسنے کا مذاق اڑانے کا موقع ملے بہت سختی سے امام نے کہا کہ اپنے پرابلم اپنے تک رکھا کرو آج یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے جس میں ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے خلاف ایک شیعہ ذاکر دوسرے شیعہ ذاکر کے خلاف کیا کچھ نہیں کہہ رہا تو یہ بھی ایک الگ موضوع ہے لیکن ٹائم میرے ہاتھ سے پھسل رہا ہے اور یہ تو ابھی تمہید تھی خلاصہ یہ بڑی مشکل سے ساتویں امام تک پہنچ گیا بڑی مشکل سے आज हम अपने घर में बैठे अपने बच्चे को भी 12 इमाम के नाम याद दिला के नजात पा लेते हैं इंशाल्लाह। यकीनन उस वक्त इमाम को ढूंढना एक मसाला होता था, बड़ी मुश्किल से पहुंचा खिदमत इमाम में। पहुंचा भी क्या, जब बहुत कंफ्यूज हो गया, रोने लगा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, और इतनी बड़ी अमानत लेके आया हूं जो इमाम तक पहुंचाना है, मैं क्या करूं इसका। तब वो इमाम ने अपना गुलाम भेजकर इसको बुलवाया। वाकई आपको याद आ रहा होगा, मैं सारी डिटेल छोड़ रहा हूं। पहुंचा खिदमत इमाम और इमाम ने पूछा, तू ही मोहम्मद इब्न इब्राहिम निशापुर से आया, हमारे चाहने वालों के अमानतें लेके आया, वो सारी बातें हूं। कहा हाँ फरजंद रसूल, ये सारी अमानतें, लेकिन मैं ऐसे तो आपको नहीं दे सकता, जो जो उस इस्लाम के उसूल है वो तो अपनी जगह पर है। छठे इमाम को तो मैं पहचानता था, कई साल उनकी खिदमत में आया, आप मेरे लिए नए। ठीक है, एक आध मैंने वाकया देख लिया कि गुलाम मेरे पास आ गया, लेकिन इतनी बड़ी अमानत मैं कैसे आपको दे दूं। अभी कंफर्म तो नहीं हुआ ना कि आप ही इमाम हैं। अरे आज के शिया तो मैं क्या पता, जो शिया इमाम के जमाने में थे उनको कितना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता था, पहचानना मुश्किल होता था, कैसे पहचाने कि ये सही इमाम है। कल जो मैंने जनाबे मिक़दाद का वाकया बयान किया कि गैबत के जमाने को गनीमत समझो, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़े इम्तिहान से वैसे ही बचा लिया। तो कहा मौला ये इतनी बड़ी अमानत है, मैं कैसे आपके हवाले करूं। इमाम ने कहा तुम्हें याद है जब तुम शहर से निकल रहे थे, जिन लोगों ने ये अमानतें दी थी उन्होंने तुमसे ये कहा था ना कि ये हमारी अमानत सिर्फ इमाम बरहक के हाथ में देना, किसी और को नहीं देना। और तुमने कुछ नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा था कि हम तुम्हें एक पहचान बताते हैं, कैसे पहचानोगे सही इमाम कौन है। और वो पहचान क्या थी, उन्होंने खुम्स भी भिजवाया है, साथ में अपने मसले भी लिख के भिजवाए। आज भी यही होता है, हम जाते हैं आगे सिस्तानी से मुलाकात के लिए, खुम्स भी देते हैं, अपने सवाल भी पूछते। तो अब उन्होंने वो अपने मसले भी भिजवाए, और तुम्हें याद है किस तरह मसले भिजवाए, भाई मसले इस तरह भिजवाए जाते हैं, पर्चे में लिखा कि जाओ दे देना वहां पे। नहीं, हर एक ने वो मसले अलग अलग, अब हर एक के मसले अलग अलग बंद किए, थैली में बंद किए, थैली के ऊपर मोहर लगाई, यानी उसको लॉक किया, उसको सील किया कि कोई खोल ही ना सके। और तुमसे क्या कहा था कि जो इमाम होगा खुमुस इसके हाथ में बाद में देना, पहले ये सारे मसले देना, रात को उसे देना, सुबह जाके उससे ये वापस लेना। और अगर तुम ये देखो कि सील नहीं टूटी है तो उसमें से 3 या 5 जो पाउचेस हैं उसकी सील तोड़ लेना, और देखना कि हमारे सवाल का जवाब लिख दिया गया है। अगर 5 में ये जवाब मिल जाए तो बाकी नहीं खोलना, वो इसी तरह ले आना, और फिर उनको खुम्स दे देना, क्योंकि ये दलील इस बात की होगी कि ये इमाम बरहक है। क्या क्या दलील? दलील ये कि वो थैली के अंदर, पाउच के अंदर पर्चा है जिसमें मसाला लिखा है, उसको अच्छी तरह से बंद किया है, उसके ऊपर सील लगाई गई है, सील भी इस तरह के अगर कहीं से भी तोड़ा जाए तो फौरन पता चल जाए। और फिर अगर इमाम इसी तरह से वो सील्ड थैली वापस करे और सवाल का जवाब, सब नहीं चेक करना, इसकी जरूरत नहीं है, एहतियातन सिर्फ 5, फिर खुम्स देना। तो फरजंद रसूल, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे खुम्स भी दिया गया इतना सारा, लेकिन अमानत है कैसे किसी को दे दूं, पहले कंफर्म हो कि आप इमाम बरहक। ये बहुत अहम जुमले हैं, क्यों? जब जमाने का इमाम आएगा तो इसी तरह आंखें बंद करके आपको नहीं मानना है जैसे ये रावी कह रहा है, आपको भी इस तरह इमाम से पूछना, क्योंकि ये भी तो रिवायत में है ना कि इमाम के आने से पहले झूठे, चीटर, फ्रॉडिये, दज्जाल, धोखेबाज आके कहेंगे हम इमाम, तो खाली जबानी कहने पे तो नहीं माना जाएगा। और ऐसे मोजिजे पर भी इमाम नहीं माना जाएगा जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी में एक आम सी चीज हो। ये बहुत बड़ा जुमला मैंने कह दिया, लेकिन वक्त कम है, और अभी हमारे पास कल से डायरेक्ट इमाम जमाना का सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो वहां पे बात आ जाएगी। आज तो इतनी सी बात, जो इसने कहा ये हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि मौला अच्छा आपका चेहरा देखा तो इत्मीनान हो गया, बातें सुनी तो यकीन हो गया, गुलाम ने मेरे दिल की बात बताई तब भी यकीन हो गया, लेकिन शरई एक तरीका है, जिन्होंने अमानत दी थी उन्होंने ये जिम्मेदारी लगाई। तो मौला ये मैं आपको पर्चे दे रहा हूं, ये सारे मसले अलग 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 जैसे इन्वॉल्व होते हैं ना, और सुबह मैं आपके पास आऊंगा, वो रकम भी लेके आऊंगा, वो है तो मेरे साथ ही, लेकिन अभी दे नहीं सकता। इमाम मुस्कुराए, इमाम ने कहा सुबह क्यों आना चाहता, कहा ये मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये सवालात कल सुबह जवाब लूंगा। इमाम ने कहा जो तुझसे कहा गया उसके हिसाब से इसमें से तीन या पांच थैलियां खोल के देख ले, अभी तो तूने मेरे हवाले भी नहीं की, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, हर पर्चे पर उसके मसले का जवाब ऑलरेडी लिखा जा चुका, इससे बड़ा तुम्हें और क्या मुजीजा चाहिए। उन लोगों ने भी कहा था कि इमाम के पास रात के वक्त ये पर्चा छोड़ना, सुबह आके लेना, और यहां तो अभी इमाम ने हाथ भी नहीं लगाया, ये सारे पर्चे इसकी जेब में पड़े हैं, इसके सामने रखे हैं जो इसके पास एक बड़ा सा थैला, तो आप खोलो जो तुमसे कहा गया ना कि पांच पांच इन्वेलप खोलना, खोलो उसे और चेक करो, ऑलरेडी सबके ऊपर उसके जवाब आ चुके हैं। चुनाचे इसकी इतना कहने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कहें जब उन्होंने कहा तो सही कहा होगा, नहीं, जिम्मेदारी है। हमारे यहां आजकल इसमें बहुत चीटिंग हो रही है, आजकल मर्जे से हटकर खुम्स लाओ खुम्स लाओ खुम्स दो ऐसे ऐसे लोग आके दावा करते हैं। वकील वर्दी ने उनको पाकिस्तान का बनाया है, इख्तियारात वो ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल करते हैं। किसी को शौक है अपना खुम जाय करने का तो अलग बात है, मैं इस पे बोलता ही नहीं हूं, इसलिए कि मैंने जिंदगी में कभी खुम्स के मसले में इंटरफेयर ही नहीं किया, वैसे ही अपने गुनाह इतने ज्यादा है उसका जवाब देते देते पता नहीं कयामत पे कितना अरसा गुजरे, इमाम के माल में क्यों इन्वॉल्व हो जाऊं। लेकिन आज भी आप जाइए आगा सिस्तानी के जो नुमाइंदे नॉर्थ अमेरिका में, वेबसाइट के ऊपर है कि डू नॉट वेस्ट योर खुम्स, और फिर आप पूरा मसाला पढ़िए, मैं उधर नहीं जा रहा, बात तो कहां से कहां जा रही है। खुलासा यह कि इसने तीन पर्चे निकाल के एक एक वन बाय वन अलग अलग हरेक का पाउच अलग था, उसने पहला अब ये इसमें से पहले दो बहुत मशहूर हैं, तीसरा जरा काबिल तवज्जो है, मुझे आज उस पर बात करना थी, वक्त नहीं रहा। ये मैं आगा सिस्तानी की किताब का फोटो स्टेट लेकर आया था, बहुत अहम एक मसला आप तक पहुंचाना था, लेकिन आज वक्त नहीं रहा, तो इंशाल्लाह ये बात बाद में होगी, लेकिन पहले असल वाकये का इतना हिस्सा सुन ले। देखिए इतना शॉर्ट करके भी 10-15 मिनट गुजर गए, वरना असल वाकया तो 40 मिनट का। पर्चा तो खोला इस, उसका सवाल है, अच्छा उसने नाम लिखा है अपना, पहचानता है, उसी के महल्ले का रहने वाला है, उसका सवाल है, नीचे जवाब लिखा हुआ। मौला एक आदमी ने ये मन्नत मानी कि मैं अपने एक कदीम गुलाम को आजाद करूंगा, यानी एक पुराने गुलाम को, तो अब मेरे पास तो बहुत सारे गुलाम है, कोई 2 महीने पहले मैंने खरीदा, कोई 6 महीने पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 10 साल पहले, मन्नत तो मान ली, अब खुद मैं कंफ्यूज हूं कि किस गुलाम को आजाद करूं तो कदीम कहलाया जाए। नीचे जवाब लिखा था जो तुम्हारे पास 6 महीने रह चुका है उसे आजाद करो, क्यों? कुरान करीम ने कदीम 6 महीने को कहा है, वल्कमर कद्दरना हक वल्कमर कद्दरना हु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, सूरह यासीन के चांद फिर एक मंजिल आती है, उर्जून खजूर के दरख्त की शाख व ब्रांच, पुराने खजूर के दरख्त की शाख की तरह होता है, और खजूर का दरख्त की शाख 6 महीने में इस तरह से बनती है चांद की शक्ल में। दूसरा पर्चा खोला, ऐसा नहीं खोला, बाकायदा सील तोड़ी, पहले चारों तरफ से सील को चेक कर रहा, जिम्मेदारी है ये मसला है, सील तोड़ी और वो पाउच खोली। पुराने जमाने की पाउचेस आपको याद है ना, जिसमें हमारे यूपी की औरतें वो पान और गोटा और वो छालिया और वो रखती थी ना, वो डोरी से खुलती है डोरी, और उसको फिर सील से लॉक किया गया था, वो तोड़ी, वो पाउच खोली। दूसरा सवाल, एक आदमी ने मन्नत मानी है कि मैं माले कसीर राह खुदा में दूंगा। कसीर, कसीर माने बहुत। बहुत किसे कहते हैं? जो मेरा बहुत है वो आपका कम होगा, जो आपका बहुत है वो बिल गेट्स का कम होगा। भाई एक आदमी मैं $100 भी मुझे महीने में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो $50 बहुत है। और आप $100 तो उठा के आइसक्रीम पार्लर के ऊपर या पिज्जा हट के ऊपर खर्च करके आ जाते होंगे, आपकी तनख्वाह है $10,000, तो आपके लिए तो $50 ज्यादा नहीं माने जाएंगे। और फिर जितना आप खर्च करते हो बिल गेट्स, तो मौला यह मन्नत तो मान ली कि कसीर यानी बहुत बहुत माल रहे खुदा में दूंगा, कितना दू। इमाम ने कहा 84 दिरहम। और दलील में कुरान की आयत लिखी, क्या कुरान ने कहा वलकद नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरा, अल्लाह ने रसूल से कहा कि हमने तुम्हारी मदद की है कसीर जगहों पे, तो रसूल ने 84 जंगें लड़ी। चुनाचे कसीर का मतलब अगर तेरे पास नहीं 84 दिरहम नहीं कहा, इमाम ने कहा 84 कसीर है, अगर तेरे पास बकरियां हैं 84, अगर बकरियां हैं तो 84 बकरियां दे, गाय हैं तो 84 गाय दे, ऊंट है तो 84 ऊंट दे। ये दूसरा सवाल उसका जवाब। तीसरा पर्चा इसने तोड़ा, यानी वो मोहर तोड़ी जो सील होती है, और फिर वो पाउच खोली और मसाला निकाला। ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक मसाला इसने निकाल लिया। ये मसाला मैंने पिछले साल असल में बयान किया, एक स्पीच मेरे खिलाफ की गई इसी मेलबर्न के अंदर, जिसमें मुझ ही को नहीं, मेरे माँ मेरे बाप सबको शामिल कर लिया गया। और स्पीच करने वाले की हिमायत में कमेटी का खत आया, वी स्टैंड विद अवर आलिम, गलत मसले पर। खैर, को पहला मौका नहीं था, एक गोल्ड मेडल ये भी मेरे लिए बन गया, लेकिन वो मसाला क्या था? मसाला ये था, अच्छा पूरा मसाला ये नहीं है, वो आधा ये है आधा कल सुनिएगा, वक्त नहीं है मेरे पास। एक बार 7वां इमाम का वाकया पढ़ रहा हूं, और तमाम इमामों में जितने इमाम हैं हमारे, कितने 12 तो हैं, जिस इमाम को ढूंढना सबसे मुश्किल था वो 7वें थे, और या फिर 12वें होंगे, काफी मैचिंग है हमारे मौजू से भी इसकी। तीसरा यह था कि एक आदमी ने कब्र खोदकर एक मुर्दे का कफन भी चोरी किया। पहले जमाने में, जैसे मैंने शुरू में एक जुमला कहा था ना, कि ये जो कपड़ा है, जब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी है, ये मशीनें आ गई हैं, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। वरना पहले जब हाथ से बुना जाता था बहुत कीमती होता था कपड़ा, यानी पूरा घर लगता था, जाके एक महीने की मेहनत होती थी एक ड्रेस में, तो कफन भी बहुत कीमती था, बहुत कीमती चीज थी कफन। अबू ज़र ग़फ़ारी के पास कफन नहीं था, कहा कि उन लोगों से मांग लेना जो मेरे पास से गुजरे। वो वाकया पहली मजलिस, तो कफन चोरी बहुत हो गई थी, तो कब्र खोदी, कफन भी चोरी किया, और मरने वाले की गर्दन काट के उसका सर भी लेके चला गया, गर्दन काट दी कम से कम। अब मौला क्या होगा इसके हवाले से? जवाब लिखा हुआ है। इमाम ने फरमाया कि जो ये मुजरिम है इसको 100 दीनार दियत देना। ये लफ्ज याद रखिए, बहुत अहम है, दियत। दियत यानी कंपनसेशन। अगर किसी को आप मार दें तो दियत का नाम होता है उर्दू में खूबहा, यानी इंग्लिश में ब्लड मनी। लेकिन ये खाली ब्लड मनी नहीं, आप किसी का हाथ तोड़ दें इसकी भी एक दियत है, कंपनसेशन। किसी की आंख फोड़ दें इसकी भी एक दियत है। इसने मरने वाले, मर गया एक आदमी, उसके उसका सर काट लिया और उसका कफन चोरी किया। इमाम ने फरमाया कफन चोरी करने पर इसका हाथ कटेगा, चोरी की है। और कफन की मालियत इतनी होती है जिसपे हाथ कट जाता। अगर जो लफ्ज इमाम का जो था वो बहुत अहम है, हिर्ज से इसने चोरी की। चोरी की दो किस्में, अगर किसी ने अपनी चीज को प्रॉपर तरीके से लॉक लगा के बंद करके रखा और चोरी करे तो हाथ कटेगा, और अगर ऐसे ही किसी ने फुटपाथ पे रख दिया, मसलन आपने सामान फुटपाथ पे रखा और टैक्सी ढूंढने के लिए गए, कराची की बात कर रहा हूं, और कोई वो सामान लेके चलता गया, तो उसका हाथ नहीं कटेगा। वो महफूज जगह से अगर कोई चोरी करे वहां हाथ कटता है, कहा क्योंकि कब्र महफूज है। यही कफन अगर बाहर कहीं रखा हो चोरी करता तो हाथ नहीं कटता, लेकिन हाँ वहां अपने अपने घर में लॉक करके रखा तो वहां भी, लेकिन कब्र इमाम ने कहा ये महफूज जगह कि उसको मिट्टी में बंद किया गया, चुनाचे हाथ कटेगा और 100 दीनार उसको दियत देना। अच्छा अब ये 100 दीनार क्या? ये वो है जो मेलबर्न से लेके बंबई और बंबई से लेके लाहौर और लाहौर से लेके हैदराबाद दक्कन और हैदराबाद दक्कन से लेके लखनऊ और लखनऊ से लेके कराची और कराची से लेके दुबई और दुबई से लेके लंदन और लंदन से लेके नॉर्थ अमेरिका। यह आज मसला बहुत पेश आ रहा, बहुत ज्यादा, और इसी पे तवज्जो आपको दिलाना थी। इतना वक्त मैंने आज वाकई वैसे दिलचस्प था क्योंकि इसका ताल्लुक इस बात से है कि इमाम को पहचानोगे कैसे। इंतजार तो कर रहे हो कि मौला जाहिर हो, पहचानोगे कैसे अगर वो आ गए? फिर एक जुमला दोहरा दूं आज की मजलिस का, अगर रसूल ये बता के जाते कि जब आके कोई कहे कि मैं इमाम हूं तो वो इमाम ही होगा, कोई ये झूठा दावा कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने किसी की जबान में ताकत नहीं रखी तो ठीक था, जो आकर कहे इमाम है वो एक सच्चा होगा। आप कहेंगे ऐसी भी कोई हदीस होती है? ऐसी हदीस बहुत मशहूर है, कहा अगर कोई ख्वाब में मुझे या मेरे बेटों को देखे हसन हुसैन और अली तो उसने हम ही को देखा है, क्योंकि शैतान ख्वाब में हर एक की शक्ल बना सकता है लेकिन मासूम की शक्ल नहीं बना सकता। भाई बिल्कुल यही हदीस, ख्वाब में अगर तुमने मासूम को देखा तो वह हम ही है, शैतान में ये ताकत ही नहीं है कि हमारी शक्ल बना सके। तो अगर ये कहते कि जो आकर कहे मैं इमाम हूं वो इमाम ही है, शैतान में ताकत ही नहीं है कि वो ये दावा करे, लेकिन ये भी नहीं कहा गया, उल्टा कहा गया कि झूठे आएंगे पहचान। ये इस वाकये में कई पैगाम आ गए, बाद में इसको कल परसों मुकम्मल करूंगा, क्योंकि हमारा जो अहम तरीन फरीजा है ड्यूटी उसको हम अदा ही नहीं कर रहे। इंतजार तो कर रहे हैं इमाम का, ये नहीं पहचान रहे कि आखिर इमाम को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। खैर तो ये बात पूरी हो जाए, ये बहुत अहम मसाला। इमाम ने कहा कि इसने मुर्दे को मुर्दे का सर काटा, तो अब वो तो वैसे ही मुर्दा। जब ब्लड मनी ये होती है कि आप किसी को कत्ल करें तो उसका आप कंपनसेशन, वो तो वैसे ही मर चुका है, इसकी क्या ब्लड मनी। इमाम ने कहा ये मुर्दा, यानी इसकी रूह निकल गई। इस्लाम में जो मां के पेट में बच्चा होता है जब तक उसमें रूह ना पड़े उस वक्त तक अगर वो बच्चे को कोई आदमी गिरा दे नुकसान पहुंचाए, जो अरबी में कहते हैं इस्कातुल जनीन, एबॉर्शन हो जाए, मिस्करेज हो जाए, वो बच्चे की दियत इस्लाम ने रखी है 100 दीनार जब तक रूह ना पड़े। कंप्लीट है बच्चा, सब कुछ उसकी बॉडी कंप्लीट हो गई या पूरा सर बन गया, हड्डियां बन गई, गोश बन गया, ये नाक आंख कान सब कुछ बन गया, सिर्फ रूह बाकी। क्या ये और मुर्दा सेम है? मुर्दा भी पूरी डेड बॉडी कंप्लीट है, सिर्फ रूह नहीं। तो जो उसकी दियत है 100 दीनार वो इसकी दियत। जब ये तीसरा जवाब भी देखा का नहीं मौला, अब बाकी नहीं देखना, मालूम है कि आप इमाम, ये लीजिए। ये कहे कि वो सारी रकम और वो सारे कपड़े दिए इमाम को, ये आखिरी जुमले में एक जुमला भी मुझे कहना है लेकिन पहले ये वाकया पूरा दे दी। इमाम तवज्जो भी नहीं दी, वो रखता गया इमाम के सामने, गुलाम एक कोने में करता चला गया, सब कुछ उसने दे दिया। इमाम इस तरह उसको देख रहे हैं जैसे अभी कोई चीज बाकी, घबरा गया वो, बोला मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, मैंने जितना मुझे शहर वालों ने दिया था वो सारा का सारा खुम्स आप तक पहुंचा दिया। इमाम ने कहा शतीता को भूल गया, जो शतीता तुझे मिली थी और उसने भी जो कुछ खुम्स भिजवाया था। अब कहा हाँ मौला याद आ गया, लेकिन वो तो मैं हमारे साथ पहले बहुत होता था, अब नहीं होता। जब एक जमाने में इज्जत थी हमारी तो बहुत ही होता था, अभी भी होगी इज्जत लेकिन हमने खुद मना किया। वो क्या, कहीं गए मजलिस पढ़ने के लिए, आश्रम पढ़ा, या कभी कभार इंग्लैंड और दुबई वगैरह में तो महीना महीना भर रहना पड़ता है 10 दिन यहाँ इस इमामबाड़े में 10। अब चले वापस, वो उस वक्त ट्रेवलिंग के यानी एक महीने के स्टे के बाद सामान बहुत हो जाता है, हज ज़ियारत में भी यही सामान बहुत हो गया, पैकिंग की जाती है, बड़ी मुश्किल से सूटकेस बंद होते हैं, जिनके यहाँ ठहरे हैं उनके बच्चों को बुला के सूटकेस पे कहते हैं भाई बेटा जंप करो कूदो ताकि किसी तरह ये जिप लग जाए, ये सारे मरहले होते थे। अब ये लेके पहुंचे एयरपोर्ट में, मालूम है एक मोमिन आ गए। मौलाना वो बड़ी मुश्किल से ऑफिस से एक घंटे का ब्रेक लेके आ रहा हूं, तो क्या कयामत आ गए? कहा नहीं पता चला, आज आप जा रहे इतने बजे फ्लाइट है, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया। अरे भाई इतनी मुश्किल से बच्चे खुदवा के तो हमने ये सूटकेस बंद किए, अब यहाँ कोई जगह ही नहीं है। वो कहा नहीं नहीं मौलाना, ये बहुत मेरा तोहफा है और लेना पड़ेगा, हम सूटकेस खोलने को तैयार नहीं। अब लेके आए तो हमने क्या किया भाई, सूटकेस के ऊपर की जिप खोली और उसी के अंदर वो चीज डाल दी और कहा ठीक है घर जाके आराम से देखेंगे क्या। तो ये अक्सर ये होता है जब पैकिंग वैकिंग हो जाए और कोई आपको कोई चीज दे, तो जो चीज भी आपके सामने नजर आई आपने उसी में वो चीज रख दी। वरना पैकिंग का एक तरीका, इसने दिरहम एक तरफ पैक किए थे, दीनार एक तरफ पैक किए थे, कपड़े एक तरफ पैक किए थे, अलग अलग सूटकेस। तो अब तो शतीता ने दिया था, शहर के दरवाजे पर था, इतनी मामूली सी चीजें थी, मैंने ले तो ली थी, लेके इसी सामान में कहीं रख दी थी, अब याद ही नहीं आ रहा। तो बड़ी रकम होती तो याद आ जाता। तो जैसे डॉलर दो, $5 ये सब अगर घर में गिर जाए तो आदमी को याद भी नहीं आता। याद तो नहीं, पाकिस्तान में मासियां आती हैं, उनकी आमदनी का बड़ा जरिया ये भी होता, झाड़ू लगाती हैं, कभी यहां से कोई नोट मिल गया, कभी वहां से कोई नोट मिल गया, तो जो मामूली रकम। तो खुलासा ये है कि मौला ये 20,000-30,000 दीनार की थैलियां थी, कई थैलियां बहुत सारी, 10-40,000 दिरहम की थैलियां थी बहुत सारी। यार इमाम ने कहा वो देखो जो मखसूस एक थैली है ना, वो दो भाइयों ने जो भेजा था, दो भाई इसके अंदर तुमने वो एक दिरहम डाल दिया था ऊपर ही। हाँ हाँ याद आ गया, जाके देखा तो ऊपर वो दिरहम रखा हुआ। और वो जो बल्ख के रहने वाले, बल्ख अभी आजकल बहुत बल्ख का नाम आ रहा है ना, मजार शरीफ से बिल्कुल मिला हुआ बल्ख, तो जो बल्ख के रहने वाले थे, मोमिन नेशापुर में आए थे, शिफ्ट हुए थे, उनके कपड़े जिसमें थे खुम्स वाले, उसमें तुमने रूमाल डाला था। हाँ मौला याद आ गया, जो इमाम ने बताया, अभी देखा भी नहीं है थैलियों को, हाथ भी नहीं लगाया और बता दिया। वो दो चीजें निकाल के दी इमाम ने, दोनों चीजें ली, बोसा दिया, गुलाम को बुलाया और कहा कि जो मेरे घर का खाना पीना बनता है ना, तो जिस पैसे से खरीदा जाता है ये एक दिरहम जाके उसमें रख दे, इससे मेरे घर का खाना पकेगा, यानी मैं जो खाना खाऊंगा वो इस एक दिरहम से खाऊंगा, और ये जो रूमाल का टुकड़ा है ना, जहां मेरा कफन तैयार है, ये जाके उसके अंदर रख दे कि जब मैं मरूं तो मेरे कफन में ये शतीता के का रूमाल भी हो। और खाली ये नहीं, कहा गुलाम मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 30 दीनार शायद कहे थे या 40, वो लेकर आओ। और उसके बाद ये कहा कि जाके शतीता को ये दे देना, कहना 19 दिन तुम जिंदा रहोगी जिस दिन रावी पहुंचेगा, रोजाना एक दिरहम खर्च करे और बाकी से अपने कफन दफन का इंतजाम करे। और वो कपड़े का टुकड़ा दिया अच्छा खासा बड़ा, कहा ये वो कपड़ा है जो मेरी दादी फातिमा जहरा के बाग में कपास उगी थी, उससे इसके धागे बने थे, और मेरी फूफी छठे इमाम की बहन ने इसको चरखे पे चला के ये कपड़े का टुकड़ा तैयार किया, शतीता से कहना कि इसे अपने कफन में शामिल कर ले। वाकया फिर है कि गया भी वापिस और सब कुछ हुआ, आप अंदाजा कर सकते शतीता की खुशी की क्या हालत होगी। इसने कहा मौला और ये तो एक दिरहम दिया तो आपने 40 वापिस की, और रूमाल का छोटा सा खद्दर का बना हुआ रूमाल, घटिया कपड़ा, और आपने इतना बेहतरीन कपास, फातिमा जहरा के बाग के अंदर जो कपास होगी उससे ये सूत बना के कपड़ा तैयार हुआ, मासूमा का हाथ लगा है, मासूम की बहन का हाथ लगा, वो आपने दिया, तो जो बाकी जो 40,000 और 30,000 दीनार दिए और ये 2,000 जोड़े दी। कहा कि जैसी नीयत शतीता की थी वैसी नीयत किसी की नहीं, और तुम्हें पता भी चल जाएगी खराबी और बाद में खराबी पता भी चले, वो जब पैसे वालों में गुरूर होता। इमाम ने इस वाकये में पैगाम ये दिया कि 30,000 दिरहम वाला पीछे रह गया, शतीता का एक दिरहम खुलूस वाला था वो सब पे हावी आ गए। दो पैगाम है इसके अंदर। इमाम के यहां क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं। तो अगर आप घर की मजलिस करें और कोई भी ना आ सके, सिर्फ आप ही बैठे हो, तब भी इमाम के वो कबूल है। आप वो इमाम क्वालिटी देखेंगे उस मजलिस की, मजलिस करने वाले का खुलूस देखेंगे। तो ये कोविड हो या कोरोना हो या कर्फ्यू हो या लॉकडाउन हो या और कोई मसले हो, आपको कोई अफसोस इस हवाले से नहीं करना, पता नहीं इमाम ने कबूल किया कि नहीं किया। लेकिन एक पैगाम तो ये कि ऐसा कबूल किया जिसकी सबसे हकीर चीज थी उसी को सबसे ज्यादा इमाम ने तरजीह दी, क्योंकि उसकी नीयत सबसे अच्छी थी। और दूसरा वो भी पैगाम साथ में है जो मैं अक्सर कहता रहता हूं कि इमाम सिर्फ हमारा इम्तिहान लेते हैं, वरना हमारे खुम से इमाम को कोई फायदा, वरना हमारी जकात से इमाम को कोई फायदा, वरना हमारे चंदे से इमाम को कोई फायदा, वरना जो हम किसी इमाम बाड़े में या किसी शबी के साथ जाके बतौर तबर्रुक कुछ पैसे डाल देते हैं, उससे इमाम को कोई फायदा है? क्या उससे इमाम का घर चल रहा? क्या इमाम हमारे उस पैसे का? वो तो सिर्फ हमारा जज्बा देखते, जो हम देते हैं उसके बाद आखिरत को छोड़े इस दुनिया में ही इमाम 40 गुना बढ़ा के वापस करते। किसी को हाथ के हाथ दे देंगे अगर शकीता जैसा जज्बा, और किसी को अपनी आइंदा जिंदगी में इतना मिलेगा इतना मिलेगा कि वो खुद हैरान होगा होगा कल मिकदाद वाले वाकये की तरह बे असबाब इन मुतअद्दिदा ऐसी ऐसी जगह से वो हैरान होगा क्यों मिल रहा, ये इसलिए मिल रहा तुमने खुम्स बाकायदगी से निकाला, तुमने ज़कात ईमानदारी से दी है, तुमने मजलिस के या इमामबाड़े के डोनेशन बॉक्स में पूरी सच्चाई के साथ किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी एडवर्टाइज के लिए नहीं, इमाम के नाम पे कुछ दिया। वो मांगता इसलिए नहीं है कि वो मोहताज है, वो मांगता इसलिए कि उससे बढ़ के हमको देना चाहता है। तो इमाम के नाम पे जो आप खर्च करें ये आधी बात। बस मैं इख्तिताम की जानिब जा रहा हूं इसलिए कि कर्फ्यू थोड़ा सा टाइम है अभी हमारे पास, कल नहीं होगा। याद रखिए मैं ऐलान को रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई बाद में लेट ज्वाइन कर रहा कि ऑस्ट्रेलिया के इस शहर मेलबर्न में जहां अल असर इस्लामिक सेंटर में ये अशरा हो रहा, आज रात से कोरोना के केसेस बढ़ने की बिना पर लॉकडाउन भी एक्सटेंशन हो गया है और कर्फ्यू भी लग गया है आज रात से, पूरे दिन का नहीं है ये, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू। तो कल से फ्रॉम टुमारो 7th मुहर्रम की मजलिस से लेके 11th मुहर्रम की मजलिस तक हमारी मजलिस एक घंटे अर्ली शुरू होगी, यानी 6:45 पे तिलावत सोजो सलाम, 7 बजे मेरा बयान, और चूंकि 9 बजे कर्फ्यू है तो 8 बजे मेरा बयान खत्म होगा ताकि शबी बरामद हो, नोहा हो, और जो मीडिया टीम यहाँ पे आई है वो कर्फ्यू का टाइम शुरू होने से पहले अपने घर पहुंच जाए। तो कल से आप ख्याल रखिएगा अगर आपको लाइव मजलिस सुनना ही है कि टाइमिंग बिल्कुल बदल रहे हैं, मेरा बयान कल से 7 बजे आखिर तक, क्योंकि मेलबर्न की हुकूमत यानी विक्टोरिया की स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि 2 सितंबर तक ये सूरत रहेगी। तो खुलासा ये कि ये तो हुआ मसले का एक पहलू, दो और खुलूस के साथ दो इमाम के नाम पे फिर देखो कितना मिलता। क्वालिटी को चेक करना, क्वांटिटी पर इतनी तवज्जो ना देना। और इमाम इसलिए नहीं मांगते हैं कि इमाम को मोहताज है, वो हमको देना चाहते हैं। लेकिन इमाम के नाम पे दो ये एक चीज है, और दूसरा भी इसका पैगाम है कि इमाम के नाम पे मत दो। मत दो का क्या मतलब है? मत लो। इमाम के नाम पे दो ये फायदा, इमाम के नाम पे मत लो, जो तुम गिव एंड टेक। कब? अगर कहीं से तुम्हारे पास माल हराम आ रहा, इमाम के चाहने वाले की सबसे बड़ी खसूसियत जो बताई गई, जो पैगंबर ने अपने हदीस में बयान की, शबे मेराज की हदीस याद कर, जो छठे इमाम ने अपनी हदीस में बयान की, जब पूछा गया मौला जाफरी जाफरी हर तरफ शोर है जाफर के मानने वाले, आप किसे कहते हैं जाफरी, आप किसे कहते हैं? और जो 10वें इमाम ने इरशाद फरमाया, तीनों का खुलासा है एक जुमला कहा, दो चीजें, अकले हलाल और सिद्के मकाल। ये हमारे शिया की खास बात, वो जब पेट में कोई चीज ले जाएगा हलाल होगी, वरना नहीं चाहिए उसको, नहीं लेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। भाई बड़ा प्रॉफिट है इसके अंदर, शराब का बिजनेस कर लो ना, बड़ा प्रॉफिट है इसके अंदर, फुला कंपनी के शेयर खरीद लो जो गैम्बलिंग करती है, नहीं चाहिए हमें। हलाल और सिद्के मकाल, मकाल यानी कौल जबान, जबान हमेशा सच बोल। अच्छा पैगंबर के अल्फाज नहीं थे ये, छठे इमाम के अल्फाज थे जो मैंने पढ़े, पैगंबर के थे कि मैंने मेराज के सफर में जन्नत देखी, तो जन्नत में उन लोगों को पाया जो दो चीजों को हराम से बचाते थे, जबान को और पेट को। पैगाम वही। और आखिरी बात सुन लीजिए, इसलिए कि बहुत ज्यादा वक्त हो गया, एक आखिरी जुमला। मैदान करबला में आका हुसैन फौज यजीद से मुखातिब होके कह रहे हैं, मैं तुम्हें कितना ही समझाऊं तुम लोगों पे असर नहीं होगा। क्यों असर नहीं होगा? इमाम ने यह नहीं कहा कि तुम यजीदी, का इसलिए असर नहीं होगा, लकद मोलियत बुतूनकुम मिनल हराम, तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए। जब पेट हराम से बच जाए तो भर जाए तो आदमी यजीदी बनता। और जो अभी मुर्दे का सर काटने का मसला इमाम ने बताया ना, ये मसला खाली सुनी सुनाई बात नहीं, मैं पर्सनल नॉलेज रखता हूं। लेकिन चूंकि हम जैसों को इस्लाम का हुक्म है कि अगर लोग आके तुमसे मसले पूछें तो उसको मिंबर पे इस तरह बयान ना करो कि कोई खानदान या कोई खास शख्सियत जो है वो स्पेसिफाई हो, तो मैंने एक आम सी बात कही कि ये वाला मसला, ये हराम मेलबर्न से लेके, लखनऊ से लेके, हैदराबाद से लेके, लाहौर से लेके, कराची से लेके, बंबई से लेके लॉस एंजलिस तक मोमिनीन कराम की एक काबिले जिक्र तादाद। ऐसा नहीं इक्का दुक्का है, इक्का दुक्का को मैं मिंबर का मौजू क्यों बनाऊ, इसमें मुफ्तला। अब ये कल बताऊंगा, मेरी जेब में सारी दलीलें हैं, ये दलीलें क्यों लाया मैं, मेरी आदत नहीं, पिछले साल की उस खौफनाक बमबारी की वजह से, जो एक मसाला शरी बताने की बिना पर, जिसमें ये पैगाम वाज़े करना था कि करबला में आका हुसैन यजीदियत से टकराए, लेकिन ये कह करके तुम हराम खा रहे। देखिए ये बेहया फौज, इससे अगर कोई ऐसी बात कही जाए ना तो वो ऐसा ही बेहयाई का जवाब पलट के देते हैं। भाई हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा नमाज पढ़ने दो, क्या जवाब मिला? फायदा क्या ऐसी नमाज का, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। हुसैन ने कहा कि तुम लोगों के पेट हराम से भरे हुए हैं, पलट के यही कहते कि हमसे कह रहे हो तो तुम्हारे मानने वालों के पेट भी तो हराम से भरे हुए हैं। तरीका यही होता। मसलन मैं अगर किसी से कह दूं कि देखिए वो आपकी बेटी बेपर्दा घर से बाहर निकल रही है, पलट के कहेंगे मौलाना आपकी बेटी भी तो बेपर्दा घर से निकल रही है, ये मोमिनों की बात कर रहा हूं, वो ये ताना देंगे अगर वाकई मेरी कोई बेटी बेपर्दा हो। तो जो यजीदी हैं, एक ने भी पलट के ये नहीं कहा, क्योंकि कहने की हिम्मत नहीं थी, पता था कि हुसैन और हुसैन के मानने वाले मर जाएंगे, हराम नहीं खाएंगे। चुनांचे मैदान करबला में किसी बच्चे ने भी नहीं कहा, किसी बच्चे ने भी नहीं कहा कि मामू बहुत प्यास लग रही, चचा बहुत प्यास लग रही। यजीद की बात मान लीजिए ना, क्योंकि वो खाना और पानी जो यजीद की बात मानने के नतीजे में मिलेगा, उससे बड़ा हराम कोई नहीं। एक बच्चे, बच्चे तो मासूम होते हैं ना, वो तो कह सकते हैं, एक ने भी नहीं कहा। बल्कि हमारे पास तो ये वाकयात आते हैं कि जिसे मसलन जिंदगी से बहुत प्यार होना चाहिए, पूरा आदमी कब्र में पांव लटकाए बैठा है, मरने के लिए तैयार, वो भी आसानी से मौत का सामना नहीं करेगा लेकिन बहरहाल तैयार होता, जवान आदमी जिसकी जिंदगी अभी शुरू हुई। वो जनाबे कासिम का जुमला हर एक को याद है, वो कल की मजलिस में आएगा, कल जनाबे कासिम का तस्किरा, मगर आज जो मैं कह रहा हूं वही बात, हक, भूखा रहना है रहेंगे, प्यासा रहना है रहेंगे। अरे भूख और प्यास क्या है, अगर मरना है तो मरने के लिए तैयार। करबला का रास्ता है, काफिला चल रहा है, दोपहर का वक्त है, हुसैन अपने खेमे में है, एक बार हल्की सी नींद आ गई, जिसे अंग्रेजी में नैप कहते हैं। अकबर बाप के खेमे में मौजूद, हुसैन ने एक बार आंख खोली और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहजादा अकबर ने पलट के पूछा कि बाबा, ये नींद से उठकर कलमा इस्तिरजा, इस आयत का नाम है कलमा इस्तिरजा, यानी अल्लाह की तरफ वापस जाने वाली आयत, बाबा ये नींद से उठ के इन्ना लिल्लाह पढ़ना? का नहीं बेटा, ये मैंने इसलिए पढ़ा कि जो चंद लम्हे के लिए आंख लगी थी, ख्वाब में देखा कोई आदमी ऐलान कर रहा कि यह सारा काफिला मौत के मुंह में जा रहा, ये मरने जा रहे हैं। अली अकबर का जवाब था, बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं? क्या बेटा यकीनन हम हक पर है। तो कहा बाबा फिर हमें क्या परवाह, फिर मौत से क्या डर, फिर तो हम मरने के लिए तैयार हैं। अकबर के उस दादा ने जिसका नाम और अकबर का नाम एक है यही तो कहा था, अबू तालिब का बेटा उसे परवाह नहीं है कि वो मौत पर जाए कि मौत उस पर आ जाए। जो दादा की शांति वो बेटे ने दिखाई, लेकिन कब? 18 साल, ये जवानी का आगाज है, अभी तो दुनिया के मजे लेना है, अभी तो जिंदगी का आगाज हुआ है। वो हम तो माले हलाल और हराम के चक्कर में है कि हराम कैसे छोड़े, वो कह रहा है मैं जिंदगी छोड़ने को तैयार हूं अगर हुसैनी हूं। लेकिन ये जो अकबर ने फिक्र बताई वही है कि जो मेरे दादा की है, नाम है वही है जो मेरे दादा का है, तो शक्ल कैसी है? वही है कि जो हुसैन के नाना की है। सीरत कैसी है? वही है जो हुसैन के नाना की है। करबला के शहीदों में अकबर इस एतबार से बहुत मुख्तलिफ है कि शहीद सब हुए, लेकिन दो तीन ऐसी बातें हैं जो सिर्फ अली अकबर के हवाले से नजर आती। जब अली अकबर मैदान में गया था तो हुसैन ने हाथ उठा के एक जुमला अल्लाह से कहा और एक जुमला फिर हाथ गिरा के उमर एहसास से कहा। कितने शहीदों के लिए ये इस तरह से आपको नजर आएगा, अल्लाहुम्मा अशद हलाहा उला इल्कौम। अकबर जा रहे हैं और हुसैन हाथ उठा के कह रहे हैं खुदा बंदा मेरा गवाह बन जा इस कौम के खिलाफ, मैं उसको मैदान में भेज रहा हूं जो सूरत में भी मेरे नाना की शबी है और जो सीरत में भी मेरे नाना की शबी। और उमर साथ से कहा कि ऐ पिसारे साथ, तू मेरे बेटे के कत्ल का इंतजाम कर रहा है, खुदा तेरी नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए मुनक़ता कर दे। हुसैन की नस्ल आज बाकी है, हमारे साथ की नस्ल खत्म हो गई। करबला के कितने शहीद आपको मिलेंगे। और अजीब बात यह कि सही रिवायत के मुताबिक, अब जो मैं मसाइब पढ़ रहा हूं, क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया है, ऐलान तो मैं कर चुका हूं कि कल से यानी फ्रॉम टुमारो फ्रॉम 7th मुहर्रम मजलिस विल स्टार्ट एट 6:45 विद तिलावत एंड सूजो सलाम एंड फ्रॉम 7 मेरा बयान शुरू होगा। लेकिन मजलिस के दौरान अब वक्त मेरे पास कम रह गया है, रेफरेंस देने का मौका नहीं है, तो जो मैं मसाइब पढ़ूंगा इसमें दो रिवायतें आएंगी, एक जनाबे ज़ैनब से रुख्सती और एक चौथे इमाम से। एक रिवायत अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल मुकर्रम ने अपने मशहूर मख्तल में लिखी है, एक रिवायत मौलाना ज़ैदी साहब पढ़ते थे। करबला की तारीख, ये एक इख्तलाफ है कि करबला में बनी हाशिम में सबसे पहली शहादत किसने दी, लेकिन अब तकरीबन ये आज डिसाइडेड है कि शहदाए बनी हाशिम में पहला शहीद अकबर। खास तौर पर जब से लोग बराह रास्त करबला में जाके अकबर की कब्र पे अकबर की जियारत पढ़ते, अस्सलाम अलैक या अव्वला कतील मिन नस्ल खैर सलील, ऐ नस्ल रसूल के पहले शहीद आपको हमारा सलाम, यानी अकबर की जियारत जो करबला में पढ़ी जाती है। तो रिवायत यह है कि सुबह से जिहाद करबला शुरू हो चुका, लाशों पे लाशें गिर रहे हैं, लेकिन पहले असाब को भेजा जा रहा। ये मुस्लिम इब्ने असजा मारे गए, वो हबीब इब्ने मुजाहिर मारे गए, वो शौजब मारे गए, वो जॉन गुलाम हबशी मारे गए, एक एक करके तमाम शहदा अपनी जाने हुसैन के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं। एक नाम और है जो कम पढ़ा जाता है, क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूं कि इस नाम के दोस्त शहीद थे, सैफ दोनों मारे, आबिस दोनों मारे शहीद हुए, शबेब शहीद, तमाम असाब खत्म हो गए। अब बनी हाशिम के शहीदों की बारी, बहन के बेटे सामने नजर आ रहे हैं, भाइयों के बेटे सामने नजर आ रहे हैं, खुद भाई सामने नजर आ रहे हैं। एक बार हुसैन ने आवाज दी, अकबर बेटा सबसे पहले तुम्हें मख्तल में जाना, पहला इम्तिहान हुसैन अपना देगा, पहला लाशा हुसैन अपने लाल का उठाएगा। अकबर तो तड़प के घोड़े की जाने पड़े, बाबा मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था, मुझे कितने जल्दी इजाजत मिलती है, इस वक्त का मैं इंतजार कर रहा था। और अकबर तड़प के घोड़े की जाने पड़े, हुसैन ने रोक दी, अकबर कहां जा रहे, बाबा आप ही ने तो इजाजत दी है। कहा वो मैंने इजाजत दी, तुम नहीं जा सकते खाली मेरी इजाजत पर, जाओ जाके घर वालों को भी खुदा हाफिज कहो। देखिए 30,000 की फौज यजीद से जंग करना आसान, बहनों फुपियों और माओ से ये कहना कि 18 साल के इस चांद का खून में आलूदा लाशा देखने को तैयार हो जाए, ये अकबर का ज्यादा बड़ा इम्तिहान। सोचते हुए चले, कैसे माँ से कहूंगा, माँ तेरा अकबर मारा जा रहा, माँ बहरहाल कितनी ही बुलंद रुतबे की हो, माँ माँ है। आप हजरात मर्द हैं, आप अंदाजा ही नहीं कर सकते जो माँ की ममता, और अकबर जैसे की माँ, कैसे माँ को यह खबर दूं कि मैं मरने जा रहा हूं, परेशानी के आलम में जाना भी जरूरी है, बाबा ने हुक्म दे दिया। उम्मे लैला के खेमे में दाखिल हुए तो एक अजीब मंजर देखा, उम्मे लैला ने मुसल्ला बिछाया है, मुसल्ले पर बैठी, जोहरैन की नमाज तो हो चुकी थी, मगरबैन में तो अभी बहुत देर बाकी, ये कौन सी नमाज का वक्त है जो अम्मा मुसल्ले पर बैठ गए। एक मरतबा का अम्मा ये मुसल्ले पर किस ली, कहा बेटा तेरी माँ ने एक मन्नत मानी कि जितने जल्द मेरे अकबर का लाशा आएगा मैं 2 रकअत शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी, मिलेगी ऐसी कोई माँ। उम्मे लैला का यजीद से फर्स्ट कजिन का रिश्ता, कहा कि बस मेरे दिल में यह ख्याल है कि ऐसा ना हो मेरा अकबर मैदान में पीछे हट जाए, लोग कहें कि चूंकि माँ का रिश्ता था यजीद से इसलिए बेटे ने सही माने में जंग नहीं की। अकबर ने मुस्कुरा के कहा अम्मा तूने तो मेरा सबसे बड़ा मसाला हल कर दिया, मैं तो सोच रहा था कैसे तुझे अलविदा कहूं। और लैला कहती है अकबर बेटा तू जल्दी जा, मैं तेरे लाशे का इंतजार कर रही हूं ताकि अपनी मन्नत को बढ़ाऊं। और अकबर चले, लेकिन अब अकबर का इससे बड़ा इम्तिहान, अकबर को जैनब ने पाला, बचपने से अकबर जैनब के पास रहे, हुसैन और जैनब का घर दीवार मिला हुआ था, अकबर ज्यादा वक्त जैनब के पास थे, जैनब के पास सोते थे, खाने का इंतजाम जैनब करती थी, अकबर को जो जरूरत पेश आती थी जैनब से वो सवाल किया करते थे। अब इस माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली फूफी कैसे जाकर कहूं कि तेरा अकबर मरने जा रहा है, फूफी के खेमे में गए, किस तरह बात की जाए। ये वो अब्दुल रज़ाक अल मुकर्रम ने जो रिवायत लिखी, देखा कि फूफी जैनब जमीन पे बैठी, अकबर ने जाके फूफी की गोद में सर रख दिया। 18 साल का जवान जिसे बेटे से ज्यादा मोहब्बत से पाला, जैनब को प्यार आ गया, अकबर के बालों में उंगली से कंघी करने लगी। अकबर बेटा इस वक्त कैसे आया, कहा फूफी अम्मा इस वक्त मुझे एक मसाला पेश आ गया, वो मसाला पूछने आपके पास आया हूं। जैनब ने कहा बेटा हर चीज का एक वक्त होता, ये कोई मसाला पूछने का वक्त तो है नहीं, जिहाद करबला अपने पीक पर है, ये मसाला पूछने का वक्त तो है नहीं। कहा नहीं फूफी अम्मा, ये मसाला तो इसी वक्त पूछना है और आप ही से पूछना, जब से होश संभाला है जो पूछा आपसे पूछ। कहा अच्छा बेटा जल्दी से पूछ ले। अकबर ने कहा फूफी अम्मा इतना बता दीजिए, आपका रुतबा ज्यादा है या मेरी दादी फातिमा जहरा का रुतबा ज्यादा, करबला में माँ का नाम सुनना था जैनब से बर्दाश्त न हुआ, एक बार तड़प के खड़ी हो गई। अकबर 18 साल के जवान होके कैसा बच्चों जैसा सवाल कर रहा, अरे कहा फातिमा जहरा जैसी शहजादी, मैं तो उनकी एक कनीज के बराबर हूँ। अकबर ने कहा तो अम्मा फूफी अम्मा अगर यही बात है ना तो आप एक काम करें, आज अपने बेटे को फातिमा के बेटे पे कुर्बान कर दे। आज जैनब तड़प के रह गई, अकबर किसी और तरह से मुझे तेरे मरने की खबर मिलती तो शायद तेरी फूफी भी मर जाती, मगर किस तरह से, अकबर ने कहा आज फातिमा के लाल पे अपने लाल को कुर्बान कर दे, जा बेटा मैंने तुझे खुदा हाफिज कहा। करबला में अकबर वाहिद शहीद है कि फौज यजीद कहती है कि हम ये देखते हैं कि वो खेमागाह से बाहर आना चाहते हैं, पर्दा उठता है फिर पर्दा गिर जाता है, पर्दा उठता है ऐसा लगता है अकबर बाहर आ रहे हैं, फिर पर्दा गिर जाता है, क्यों? इसलिए कि जब अकबर बाहर आना चाहे कोई बहन आके लिपट जाए, भैया एक बार और अपना चेहरा दिखा दे। जब अकबर बाहर निकलना चाहे कोई फुफी आके लिपट जाए, अकबर बेटा एक बार तेरी फुफी और तेरी जियारत कर ले। बार बार अकबर निकलना चाहे बार बार पीछे आ जाए। यहाँ तक कि आका हुसैन को कहना पड़ा, बीबियों अकबर का रास्ता न रोको, देर हो रही है, फौजे यजीद इंतजार कर रही। हुक्मे इमाम आ गया, सारी बीबियां पीछे हट गईं। अकबर बाहर जाने लगे, अब एक आवाज आई, अकबर भैया ये वही जैदी साहब वाली रिवायत, अकबर भैया सबसे मिल लिए, क्या हमसे न मिलोगे? अकबर ने मुड़ के देखा तो क्या देखा, बिस्तर पर मेरा बीमार इमाम सज्जाद अपनी कब्र को पकड़े बैठा है और कह रहा है कि अकबर भैया एक बार हमसे तो मिल के जाओ। अकबर पलट के आए, भाई ने भाई के गले में बाहें डाली, खुदा मालूम क्या बातें की। और अब अकबर चले, घोड़े पे सवार हुए, अभी घोड़ा आगे बढ़ा था कि हुसैन एक दुआ खुदा से की, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम, और एक बद्दुआ उमर साद को दी। अकबर घोड़े पे बैठे हुए आगे बढ़ रहे हैं कि एक बार ऐसा लगा कोई मेरी सवारी के पीछे पीछे चल रहा। मुड़ के देखा, कौन? क्या देखा? मेरा 57 साल का बूढ़ा बाप पैदल मेरी सवारी के पीछे पीछे इस तरह आ रहा है कि जैसे जैसे मैं घोड़े की रफ्तार बढ़ा रहा हूं, हुसैन पैदल हैं अपनी रफ्तार बढ़ा रहे। जवान बेटा बूढ़े बाप को इस हालत में देखा, तड़प गया, घोड़ा रोक लिया, हाथ जोड़े, बाबा इस तरह तो मैं दुश्मन के सामने नहीं जा सकता अगर आप मेरी सवारी के पीछे चलेंगे। अजीब जुमला, किसके लिए जुमला कहा है हुसैन? और कोई शहीद के लिए कहा? अकबर तेरा कोई जवान बेटा नहीं है, इसलिए तुझे नहीं पता तेरे बूढ़े बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। अकबर ने कहा, लेकिन बाबा मैं कैसे मैदान जंग में जाऊं? बात मुख्तसर करता हूं, बहुत वक्त हो गए रोने के लिए, साहिबान औलाद अकबर की जवानी जहन में लाइए, यही काफी है, बयान की भी जरूरत नहीं। हुसैन हुसैन तिल्ला ज़ैनबिया करीब में टीला है, उस पे जाके बैठ गए। अकबर घोड़े पे आके बैठ गए, घोड़े पे सवार हुए, हुसैन करीब एक टीला है उस पे जाके बैठ गए। तल्ला ज़ैनबिया के बिल्कुल पीछे खेमागाह, ज़ैनब खेमागाह के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई और खेमागाह के अंदर उम्मे लैला का खेमा है। उम्मे लैला अपने खेमे में मुसल्ले पे जाके खड़ी हो गई। ये घोड़े पे है, वो टीले पर है, वो दरे खेमा है, वो मुसल्ले पर है। अकबर की निगाहें फौज पर है, हुसैन की निगाहें अकबर पर हैं, ज़ैनब की निगाहें हुसैन पर हैं, लैला की निगाहें ज़ैनब पर हैं। एक अजीब मंजर बन गया। अब क्या बताऊं, फातेह खैबर के पोते का जिहाद है, मैदान खंदक के फातेह का जिहाद है। फौजे यजीद अलामानो अल हफीज पुकार उठी, मेरे पास जिहाद अकबर बयान करने का वक्त नहीं। थोड़ी देर गुजरी, एक बार अकबर कलेजे में पर्ची खा के घोड़े से जमीन करबला पे गिरे, हुसैन टीले से गिरे, ज़ैनब दरे खेमा पर गिरी, लैला शुक्र के सिजदे में गिरी, शुक्र लिल्लाह, खुदावंदा तेरा शुक्र है मेरी कमाई काम आ गई। हुसैन गिरे, उठे, फिर गिरे, फिर संभले और फिर एक मरतबा अकबर की जानिब आगे बढ़े। हाय अजीब वक्त है, खुदा किसी साहिब औलाद को ये वक्त ना दिखाए, ये तो अकबर जैसा बेटा है। हुसैन की आंखों की बीनाई कुछ देर के लिए चली गई, आवाज दी, उदऊनी या बुनैया, बेटा मुझे पुकारो ताकि मैं तेरी आवाज सुन के तेरे करीब जाऊं। अकबर ने आवाज दी, इलैया इलैया, बाबा यहाँ आइए, खुदा आपको करबला मोहल्ला ले जाए। आज भी मकाम अली अकबर मौजूद है, जहाँ हुसैन का 18 साल का ये चांद घोड़े से जमीन करबला पे गिरा। मेरा मौला पहुंचा, अजीब मंजर देखा, खुदा किसी बूढ़े बाप को ये मंजर न दिखाए। अकबर का बहता हुआ खून पहले नजर आया और फिर अकबर का जख्मी जिस्म। इस तरह से अकबर जमीन करबला पे है, ये दोनों हाथ दोनों हाथ दोनों हाथ सीने पे रखे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं। हुसैन करीब आए, कहा अकबर बेटा तुझे भी उठा के खेमों तक ले जाना चाहता है। ये कह के मेरा मौला झुका, एक हाथ अकबर की गर्दन के नीचे रखा, एक हाथ अकबर के पैरों के नीचे रखा। अल्लाहु अकबर कह के अकबर को उठाना चाहा, लेकिन हाय मेरा 57 साल का ज़ईफ इमाम, हाथ कांप गए, अकबर न उठाया गया दोबारा। जब तीसरी बार भी हुसैन कामयाब न हुए, 57 साल का मेरा बूढ़ा इमाम है लेकिन है तो फातेह खैबर अली का बेटा, जवान को न उठाया गया। कहा अकबर बेटा कुछ तुम भी बाप की मदद करो। अकबर ने कहा बाबा मैं क्या मदद करूं। कहा कि अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दो तो तुझे आसानी से उठा लूंगा, बस इतना कहना था, इतना सुनना था। अकबर ने अपना एक हाथ सीने से हटाया, हुसैन की गर्दन में डाला। हुसैन ने कहा अकबर और दूसरा हाथ। कहा बाबा दूसरा हाथ कलेजे से हटाना नहीं चाहता हूं, मैं ये सुनना था मेरा मजलूम आका। दो कदम पीछे हट गया अकबर। ये क्या कह दिया, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कितना साबिर है, ये दूसरा हाथ भी सीने से हटाओ, तुम्हारा बाप देखे तो सही क्या बात है। अकबर अब हुक्म आ गया, अकबर ने सीधा हाथ भी हटाया, कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल नजर आ रहा है। हुसैन ने कहा अकबर बेटा बस इतनी सी बात है। ये कह के मेरा मौला अकबर के सीने के करीब इस तरह दो जानू बैठा जैसे आप नमाज के तशहुद में बैठते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं तड़प के कहूं या रसूल अल्लाह जरा जल्दी से मैदान करबला में आइए, लेकिन अकेले नहीं आइएगा, अपने साथ इब्राहिम खलील खुदा को लेके आइएगा। ऐ इब्राहिम ये करबला का इस्माइल है, ये बूढ़ा बाप है जवान के सीने से बर्छी निकाल रहा, लेकिन इस बाप की आंखों में पट्टी नहीं बंधी है, इस बाप के हाथों में राशा नहीं है। बस एक बार बर्छी के फल पे हाथ डाला, हाँ इतना मेरा दिल कहता है, हाथों में राशा नहीं था, आंखों में पट्टी नहीं थी, मगर बर्छी को निकालना चाहते हैं तो मुड़ के नजब को जरूर देखा होगा और कहा होगा या अली मदद बाबा, इस जवान के सीने से बर्छी निकालना है, हुसैन की मदद को आइए। मगर जवान के सीने की बर्छी हड्डियों में फंसी। इधर हुसैन ने बर्छी हिलाई, अकबर का कलेजा हिला, कलेजे का हिलना है अकबर का जिस्म हिला, जिस्म का हिलना है जमीने करबला हिली, जमीने करबला का हिलना है खेमे हिले, पर्दा हिला। ज़ैनब की आवाज आई, भैया अगर मदद की जरूरत है तो बहन आ रही है। हुसैन ने अकबर का लाचा छोड़ दिया, खबरदार ज़ैनब खेमे से बाहर ना आना, तेरे पर्दे पर मैंने अपने अकबर को कुर्बान कर दिया। और मौला जरा शामे गरीब आइए, यही ज़ैनब है, खेमे जले चादर छिनी बाल खुले और ज़ैनब वालिया वापसा, बेटा अली अकबर की फरियाद बुलंद करते हुए खेमे।
कहती थी ये माँ खूबरी मैयत से लिपट।